कहते हैं कि फूल खिलते हैं तो खुशबू बिखर जाती है, फूल खिलते हैं तो खुशबू बिखर जाती है, भगवान के दर पर आकर किस्मत खुल जाती है, किस्मत खुल जाती है। आप सभी भगवान के दर पर बैठे हैं तो निश्चित ही आप सभी की किस्मत संवर रही है, लेकिन ये जो भगवान का दर है इसका मजबूत नींव कैसे पड़ा, कब पड़ा और इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी कुंती बहन। मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय कुंती बहन आप मंच पर आए और सभी तालियों से दीदी का स्वागत करें। सेवा बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान की आराधना या उसका आशीर्वाद प्राप्त करने का सीधा सा तरीका है कि सेवा का काम शुरू कर दे। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी कुंती बहन ने 46 वर्ष पूर्व सेवा का काम शुरू किया और अभी तक भी बिल्कुल अथक होकर और दृढ़ता पूर्वक वो सेवा करते चले आ रहे हैं। 1985 में बॉम्बे टू दिल्ली युवा पदयात्रा में आपका मुख्य योगदान रहा है। आपने मुंबई के 1400 स्कूलों में बच्चों के स्कूल करिकुलम में मूल्य शिक्षा को शामिल करने की स्वीकृति प्रदान कराई और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1996 में आपने भारतीय रेलवे के द्वारा पहली बार मुंबई के सभी रेलवे स्टेशनों पर एंटी टोबैको एग्जिबिशंस का आयोजित करने की स्वीकृति आपने ही प्राप्त कराई। तो एक बार जोरदार तालियां। और फिर से 1999 में भी आपने भारतीय रेलवे के द्वारा पहली बार भारत के सभी रेलवे स्टेशनों पर एंटी टोबैको एग्जिबिशंस आयोजित करने की स्वीकृति फिर से प्राप्त की। इन सभी सेवाओं के लिए आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है समय प्रति समय। अभी हम आपके ही मुखारविंद से सुनते हैं इस संस्था का इतिहास क्या रहा, तो लीजिए सुनते हैं आदरणीय कुंती बहन के द्वारा।
ओम शांति। सभी गीत सुन रहे थे कि भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। अब जानते हैं कि एक तरफ भारत का नक्शा हो, वैसे भी कहानी शायद सुनी होगी कि पिताजी जब काम में बड़े व्यस्त थे और बच्चा डिस्टर्ब कर रहा था तो पिताजी ने कागज के टुकड़े कर दिए और कहा कि ये तुम भारत का नक्शा बना करके आओ। बड़ा मुश्किल कार्य था लेकिन वो बच्चा बहुत जल्दी बना करके आ गया। इसका रीजन था कि कहीं हाथ कहीं पैर कहीं मुख वह दिखाई दे रहा था तो उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं एक मनुष्य के चित्र को बना दूं। तो उसने मनुष्य के चित्र को जब बनाया तो भारत का नक्शा अपने आप तैयार हो गया। कहने का भाव यही है कि एक व्यक्ति अगर अपने जीवन के अंदर दृढ़ संकल्प करता है तो वह हर कार्य को कर सकता है। एक की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए भी एक ही दिव्य पुरुष। वो दिव्य पुरुष कौन, जिसके लिए कहा भी गया है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, खुदा के नूर से आदम जुदा भी नहीं है। तो वो कौन जिसके लिए ये कहावत कही गई? हम आप सभी जानते हैं कि भारत देश के अंदर दैवी संस्कृति शुरुआत से लेकर के चली आई। तो परमात्मा ने जिस तन में प्रवेश किया वो सिंध हैदराबाद 1936 की बात है। तब एक वृद्ध मनुष्य, जिसके लिए यहां थोड़ी सी बात सिर्फ बताना चाहूंगी कि आप लोगों ने सत्यनारायण की कथा पढ़ी है, उसमें भी लिखा हुआ है कि बूढ़ा ब्राह्मण बनके कंचन महल किया, या कहें कि जब बनिए के पास एक बूढ़ा जाता है और कहता है कि तुम्हारी इस गाड़ी में क्या है, तो वो कहता है लत्तादि पत्रादि माना झाड़पान। तो उसने कहा तथास्तु। और फिर जब गाड़ी को चलाने लगता है तो बिल्कुल हल्की हो जाती है, तब उस व्यक्ति को ख्याल आता कि बूढ़ा ब्राह्मण कोई और नहीं, ये कोई दिव्य पुरुष होगा, ये कोई भगवान का रूप होगा। तो कहने का भाव ये आता है कि भगवान जिस समय भी इस सृष्टि पर आते हैं तो वह उस ही तन में आते हैं जो साधारण रूप हो, जिसके लिए ही कहा गया है कि उसे कोटों में कोई और कोई में भी कोई विरला ही पहचानता है, सभी उसे पहचान नहीं पाते। तो वह दिव्य पुरुष जो हैदराबाद सिंध में, जिसे सभी दादा के नाम से जानते थे, लेकिन जब परमात्मा ने दिव्य प्रवेश किया तो उनका कर्तव्य वाचक नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। वो प्रजापिता ब्रह्मा जिनका प्रभावशाली व्यक्तित्व था, गौर वर्ण के संतुलित शरीर, या ये कहें कि उनके व्यक्तित्व को देख करके भी लोगों को आकर्षण होती थी, ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व होने के कारण भी हम ये कहें कि परमात्मा ने उस तन में प्रवेश किया। दूसरी बात उनके अंदर यह थी कि उनके अंदर राजकुलोचित संस्कार माना राजाई घराने के संस्कार वह भरे हुए थे, अर्थात उनके अंदर रॉयल्टी थी और वह रॉयल्टी इस ईश्वरीय सेवा में भी काम आई। और रॉयल्टी के आधार से प्रजापिता ब्रह्मा इस ईश्वरीय सेवा करने का आदेश देते थे। तीसरी बात थी कल्याण की भावना। चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, उनके साथ किसी ने कैसा भी व्यवहार क्यों न किया हो, दुख से पीड़ित क्यों न हो, हर एक के प्रति कल्याण की भावना थी, दान करने की भावना थी। दादा अपने काका के साथ जब बिजनेस में थे, उनके चाचा दानवीर कहे जाते थे, बहुत दान करते थे, तो दादा लेखराज भी जाकर के बचपन से उनके साथ बैठते थे और वह भी उनके साथ बैठे बैठे दान किया करते थे। तब से लेकर के कल्याण की भावना, दानवीर की भावना उनके अंदर जागृत हुई। दूसरी बात थी कि थे साधारण, परंतु साधारण होते भी उनकी बुद्धि चमत्कारी थी, असाधारण थी। साधारण घर में जन्म लिया सन 1876 में। उनके पिताजी एक स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। उनके घर में जन्म लिया वल्लभाचारी थे। साथ साथ साधारण घर में होते हुए भी उनके संस्कार, दादा के अपने निजी संस्कार वो रॉयल थे, और वो रॉयल संस्कार होने के कारण, बुद्धि चमत्कारी होने के कारण दादा ने धीरे धीरे करके एक गेहूं का व्यापार आरंभ किया, और उस गेहूं के व्यापार को आरंभ करने के बाद धीरे धीरे वे आगे बढ़ते गए, और बाद में दादा एक हीरे जवाहरात के व्यापारी बने। आपको मैंने बताया कि दादा के अंदर राजाई संस्कार भी थे। दादा के प्रति राजाओं महाराजाओं को विश्वास था, उनकी ईमानदारी और साथ साथ सच्चाई, इसलिए राजा महाराजाओं के महलों में जाने के लिए जो अन्य व्यापारी जाते थे तो उन्हें स्वीकृति लेनी पड़ती थी, जबकि दादा लेखराज को उनके महलों में जाने की छूट थी। राज माता भी उन्हें कहती थी कि आप अंदर आइए, इस बहू और बेटी को जेवरात दिखाइए, और बाबा बड़े सम्मानित रीति से उस राज महल में जाते थे, उनकी बेटियों आदि को जवाहरात दिखाते थे, क्योंकि दादा के प्रति राज माता और महाराजा जो थे उनको भी विश्वास था। सबसे बड़ी बात काम आती है अपने जीवन की ईमानदारी और अपने जीवन का विश्वास, इसलिए हर समय प्रति समय राजाएं महाराजाएं बाबा को निमंत्रण भी दिया करते थे। एक बार की बात है कि राजा के दरबार में दरबार चल रही थी, परंतु राजा की धर्म पत्नी वो पीछे बैठी थी, दादा भी पीछे बैठे थे। राजा की धर्म पत्नी का ये विचार था कि पहले हम श्रीनाथ द्वारे जाकर के आए, लेकिन जब राजा की नजर दादा पर गई और मां यशोदा पर पड़ी तो राजा ने बड़े सम्मान के साथ उन्हों को पहले दरबार में बुलाया। जब वो जा रहे थे राज दरबार के अंदर तो कहते हैं गाजे बाजे बजा करके उनका स्वागत किया गया, मैंने इतना सम्मानित, जिन्हें राजाएं महाराजाएं धनाढ्य व्यक्ति भी करते थे, वो किस आधार से करते थे, उनकी विशेषताएं वह उन्हें सम्मान प्राप्त कराती थी, उनकी प्रेम की भावना, एक दूसरे के प्रति पहले से लेकर के बंधुत्व की भावना, वो बचपन से लेकर के ऐसे संस्कार थे, इस आधार से उन्हें सम्मान से आमंत्रित किया जाता था। दादा के अंदर मन की सच्चाई भी थी, कोई भी बात है लेकिन वो कभी भी अपनी सच्चाई से वो पीछे नहीं हटते थे, इसी आधार से भी सम्मान प्राप्त होता है, जहां सच्चाई है वहां हम स्वयं सम्मानित होते हैं। दूसरी बात यह भी हम देखें कि दादा गुरुओं के सत्संगों में, धार्मिक बातों में, भक्ति भाव में भी इतना ही महत्व रखते थे। दादा को ये कहा जाए कि बचपन से लेकर के श्री नारायण के प्रति बहुत भावना थी। इतनी भावना थी कि वह जेब में भी श्री नारायण का फोटो रखते थे, अपने शयन गृह में भी श्री नारायण का फोटो, हर स्थान पर देखो तो बाबा ने श्री नारायण का फोटो रखा हुआ था। लेकिन हाँ, दादा को एक बात पसंद नहीं आती थी, वो ये, जब कोई बाबा चित्र ऐसा देखते थे कि श्री नारायण के पैर श्री लक्ष्मी दबा रही है, वो चित्र बाबा को पसंद नहीं आता था। इसलिए कि दासीपन है, लक्ष्मी व दासी नहीं थी, श्री नारायण और श्री लक्ष्मी दोनों की पदवी समान है। इसलिए बाबा को ये चित्र देख करके थोड़ा अच्छा नहीं लगता था और बाबा इस चित्र को अलग करा दिया करते थे। इसलिए सिर्फ श्री नारायण की भक्ति भी करते थे, श्री नारायण का चित्र भी हमेशा साथ रखते थे। इसलिए कहते हैं कि जैसा चित्र वैसा चरित्र बनता है। हम हमारे मन के अंदर किस प्रकार का चित्र बनाते हैं, बाबा ने तो बचपन से श्री नारायण का चित्र अपने मन के अंदर बसा करके रखा, तो चरित्र भी उनका वैसा ही बना। धर्म में भी गीता पाठ करना उनका नियम था, चाहे कोई भी उस समय क्यों ना आ जाए, परंतु दादा कभी भी अपने धर्म को तोड़ते नहीं थे। कोई आ गया है कोई बात नहीं, लेकिन वो अपना गीता पाठ करने के सिवाय किसी से भी वे मिलते नहीं थे। यह भी एक विशेषता है। आज आप हम सभी देखें कि धर्म को जरूर मानते हैं, परंतु धर्म की जो धारणा है उससे हम थोड़ा अलग हो जाते हैं। आज के युग की अगर हम बात करें, ये विज्ञान का युग है, साइंस के साधन हमारे हाथ में है, गीता का पाठ कर रहे होंगे और इतने में अगर मोबाइल बज जाए तो हम क्या करते हैं, अपने नियम से थोड़ा हट जाते हैं। लेकिन दादा इतना नियमित थे कि कुछ भी हो जाए, चाहे कोई बिजनेस के काम से ही क्यों ना आ जाए, परंतु धर्म वो धर्म है, नियम वो नियम है। साथ साथ न सिर्फ भक्ति, लेकिन दादा को गुरुओं के प्रति भी बहुत आस्था थी, गुरुओं के प्रति भी इतना सम्मान था। सत्संगों में जाया भी करते थे और अपने घर में सत्संगों को कराया भी करते थे। एक बार उनके घर में गुरुजी एक मंडली के साथ ही आ गए। जब दादा ने देखा कि गुरुजी आए हैं, तो गुरुजी के आने के साथ दादा ने कई गुलाब जल की बोतलें मंगवाई और हर स्थान पर गुलाब जल छिड़क दिया। दूसरी बात, जब गुरुजी आए हुए थे तो बाहर कुत्ते, आवारा कुत्ते आवाज करते हैं, डिस्टर्ब होता है, तो गुरुजी के प्रति उन्होंने इतना ध्यान रखा कि गुरुजी के नींद में भी खलल नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए एक पहरेदार लगा दिया ताकि गुरुजी आराम भी अच्छी तरह से कर सके। यानी इतनी आस्था वह देखने को मिले। फिर गुरुजी की ही बात को देखते हैं, दूसरी बात, गुरुजी का फोन आया और गुरु जी ने कहा कि आपको अभी ही आना है। तो गुरु जी के इस बात को सुन करके दादा फौरन तैयार हो गए, परंतु उनके ही घर में उनके पोते का नामकरण विधि का दिन था। सारे मेहमान उनके घर में आ रहे हैं नामकरण विधि के लिए, और दादा को गुरुजी का फोन आया कि तुम फौरन आ जाओ। ऐसे समय पर अगर कोई दूसरा हो तो वह ये सोचेगा कि ये कार्य करके फिर जाता हूं, गुरुजी से क्षमा मांग करके रुक भी जाएगा। लेकिन दादा को यह देखा कि उन्होंने तुरंत अपनी धर्म पत्नी को कहा कि मेरी तैयारी करो और ड्राइवर को बुलाओ। जब धर्म पत्नी ने कहा कि आज इतना ऐसा मौका है, नामकरण विधि का दिन है, आप कैसे जाएंगे, तब दादा ने तुरंत कहा कि गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा। अगर इस समय मेरा काल आ जाए तो क्या मैं काल को कह सकता हूं कि तुम रुको, मेरे घर में नामकरण विधि का दिन चल रहा है? नहीं कह सकते। इसलिए मैं गुरु को भी मना नहीं कर सकता। तब घर वालों ने औरों को भी बताया कि गुरु के बुलावे के कारण दादा को जाना पड़ा। पर क्या ऐसा कारण बना जो गुरु ने तुरंत बुलाया? तो कहते हैं कि गुरु का कोई शिष्य किसी बात के कारण वो घाटे में आ गया था और उन्हें कुछ धन की आवश्यकता थी उसी समय पर, इसलिए दादा ने पहले उस कार्य को महत्व दिया, अपने घर की खुशियों को महत्व नहीं दिया। पहले संकट के समय, परिस्थिति के समय हम किसी के काम आ सकें। गुरु जी कह रहा है ये परिस्थिति में तुम्हें सहयोग करना है, माना मुझे पहले सहयोग करना। इस बात को दादा ने पहले महत्व दिया। तीसरी बात की बात है कि दादा के घर में ही सत्संग चल रहा था। बंबई का वह बाबुली नाथ मंदिर शायद आप सभी ने सुना होगा, उनके पास ही दादा का अपना मकान था। उस मकान के आंगन में सत्संग चल रहा था और दादा को पहला साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का। और वह विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार होते ही दादा को ऐसी आवाज आई, अहम चतुर्भुजम तत् त्वम। ये जब आवाज आई तो पहले तो दादा को समझ नहीं आया कि ये क्या है, परंतु फिर दूसरा साक्षात्कार जब दादा को हुआ तो दूसरे साक्षात्कार में दादा ने देखा कि ये कलयुगी सृष्टि है और इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश, कहीं बम विस्फोट हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, वो विनाश का नजारा दादा ने देखा। तीसरी बार फिर सत्संग में बैठे बैठे गुरुजी आए हुए थे, सत्संग कर रहे थे और दादा उस समय बिल्कुल न्यारे एक अलौकिक वो नजर आने लगे और वो सत्संग सुनते सुनते उठ करके चले गए। तब उनकी पुत्र वधु का ध्यान दादाजी पर गया। तो पुत्र वधु ने माँ यशोदा से कहा, इशारा दिया, यशोदा माँ भी उठ करके गई, परंतु फिर पुत्र वधु को विचार आया कि कि मैं भी जाकर देखूं कि ऐसे तो दादा कभी सत्संग से गुरु सत्संग कर रहे हों और उठ करके जाएं, कभी ऐसा नहीं हुआ। आज क्यों उठ करके गए, क्या बात हुई? और देखते हैं तो दादा जब अपने कमरे में गए तो सारा कमरा प्रकाश प्रकाश प्रकाशित नजर आ रहा था। दादा के मुख से कुछ शब्द निकल रहे थे जो उनकी पुत्र वधु ने महसूस किया कि दादा नहीं बोल रहे हैं, दादा के मुख से कोई और बोल रहा है। और वो शब्द थे निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। दूसरी लाइन थी ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तीसरा था प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इस प्रकाश से वर्धनी निकल रही थी और उनकी पुत्र वधु बड़े ध्यान से उस दृश्य को एक साक्षी दृष्टा होकर के देख रही थी, वो आवाज सुन रही थी। और इतने में दादा जब उस अलौकिकता से नीचे आए तो दादा से पूछा कि क्या है, तो कब कुछ ऐसा प्रकाश था, कुछ स्वर्ग था, श्री कृष्ण था, ऐसे ऐसे दादा थोड़ा थोड़ा वर्णन करने लगे। और गुरु जी से भी पूछा कि मैंने यह जो दृश्य देखा वह दृश्य एक विशेष सूचना है कि जो भी टूर्स ऑपरेटर हैं, जो भारत या विदेश में टूर्स लेकर के जाते हैं, वह अभी ही दादी कॉटेज में पहुंचे, दिव्या बहन आपसे वहां पर मिलेंगी। जो कोई टूर्स को लेकर के जाते हैं, ग्रुप को लेकर के जाते हैं, ऐसे अगर कोई हो तो वे उठे। तो यहां हम देख रहे थे कि दादा ने सोचा कि ये सारे साक्षात्कार गुरु जी की कृपा से हुए होंगे। और जब दादा ने गुरु जी से ये साक्षात्कार की बात बताई तो गुरु जी चुप शांत थे, वो भी नहीं समझ पाए कि ये क्या बोल रहे हैं। तब दादा को अंदर महसूस हुआ कि गुरु जी के सामर्थ्य से बाहर की बात है। इस बात को महसूस करने के बाद उन्हें लगा ये कोई अद्भुत शक्ति, ईश्वरीय शक्ति कोई और है। इस प्रकार से जब अनुभव किया, महसूस किया, तो दादा उन्हीं बातों में, विचारों में, चिंतन में लवलीन रहने लगे। और धीरे धीरे करते करते दादा को ऐसा अनुभव हुआ ये कार्य स्वयं परम पिता परमात्मा कर रहा है। और ऐसा कार्य करने वाला वो कोई साधारण नहीं हो सकता है, वो अलौकिक हो सकता है। तब उन्हें ये महसूस ताकि वह दिव्यता की अनुभूति हुई। और उस दिव्यता की अनुभूति के आधार से धीरे धीरे बाबा को यह भी आता गया कि मैं कौन, मैं कौन। जब इस बात में आए तो अंदर से उन्हें आवाज जैसे आई, ऐसी महसूसता हुई कि मैं आत्मा हूं, ये जसोदा आत्मा है, ये फलाना आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, हर एक के प्रति यह भी आत्मा, यह भी आत्मा, यह भी आत्मा, वह अंदर से महसूसता होती थी। धीरे धीरे करते बाबा ने लिखना भी शुरू किया कि मैं आत्मा, जसोदा आत्मा, नारायण आत्मा, ये सब आत्मा है। इस प्रकार से लिखते लिखते ओम की ध्वनि के आधार से भी चलते रहे और धीरे धीरे बाबा के द्वारा जो भी बाबा को देखता था उन्हें बाबा नजर नहीं आता था, लेकिन कोई अलौकिक व्यक्तित्व है। किसी को ऐसा अनुभव हुआ और किसी को बाबा के रूप में श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ कि ये तो श्री कृष्ण है। धीरे धीरे ये सत्संग की शुरुआत हुई। कुछ माताएं कन्याएं आने लगी इस सत्संग में। धीरे धीरे इस सत्संग की वृद्धि भी होने लगी और बाबा अपने कार्य के आधार से कलकत्ता भी गए। तो भी पीछे जो इन्होंने ज्ञान सुना था, मैं आत्मा हूं का अनुभूति की थी, उसी ज्ञान के मनन चिंतन में रहते थे। बाबा वहां से उन बच्चों को पत्र भी लिखा करते थे और उन बच्चों को पत्र में भी वह ज्ञान की बातों को ही लिखा करते थे। कब किसके नाम से पत्र जाता, कब किसके नाम से पत्र जाता, तो जिसके नाम से पत्र जाता उन्हें बड़ा हर्ष होता था कि आज बाबा ने मुझे याद किया और बाबा ने यह ज्ञान की पॉइंट मुझे भेजी है। लेकिन इसमें विशेषता यह बात नजर आई कि जिसके भी नाम से पत्र जाता था वह दूसरों को पढ़कर के सुनाता था कि देखो बाबा ने यह लिखा है, बाबा ने यह लिखा है, क्योंकि वह नाम एक का लेकिन ज्ञान की बात सबके लिए होती थी, क्योंकि बाबा के लिए सभी समान थे और बाबा हर बच्चे की पालना एक पितृत्व भाव से करते थे। हर आत्मा ऐसा अनुभव करती थी कि पिता के रूप में बाबा हमारी पालना कर रहा है। चाहे कहीं भी बाबा जाते थे, दूर बैठे भी बच्चों के साथ ज्ञान का वार्तालाप, ज्ञान का चिंतन पत्र के द्वारा होता रहा। धीरे धीरे ये संख्या और बढ़ती गई और बाबा ने जब थोड़े से नियमों को भी बताया, ज्ञान सुनने के लिए, ज्ञान समझने के लिए, ज्ञान को धारण करने के लिए कुछ नियम आवश्यक होते हैं। जब छोटी छोटी बच्चियां, आज जिन्हें हम दादियां कहते हैं, उस समय पर कोई 8 वर्ष की, कोई 12 वर्ष की और कोई 14 वर्ष की थी। अपने 18 तारीख सायंकाल रतनमणि दादी को देखा। 1937 में जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया वो 12 वर्ष की थी, तो आज 78 वर्ष इस संस्था को हो गए, तब सोचिए आज इतने बड़े रूप में दिखाई दे रही हैं। तो इतनी छोटी छोटी उम्र में ये दादियां कुमारियों के रूप में बाबा के पास आई थी, परंतु बाबा ने कभी उन्हें ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि इस चीज की कमी है, कि ये चीज की कमी है, कि यह चीज की कमी है। हर बच्चियां ऐसा अनुभव करती थी कि जैसे सबसे ज्यादा प्यार बाबा मुझे कर रहा है, बाबा सिर्फ मुझे देख रहा है, बस ऐसी फीलिंग कि वो भगवान का प्यार मुझे मिल रहा है। ऐसे ही समय पर एक और कुमारी इस ज्ञान में, इस सत्संग में आई, जिसका नाम था राधे और बाबा ने उन्हें कहा ओम राधे, क्योंकि वह ओम की ध्वनि लगाती थी और ओम की ध्वनि से वह ओम राधे के नाम से पहचानी गई, जिसे आज हम सभी कहते हैं माँ जगदम्बा, जिसे मम्मा, प्यार के नाम से हम सभी मम्मा कहते हैं। वह ज्ञान में आई, वह भी एक अच्छी व्यक्तित्व वाली, प्रभावशाली, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर उस ज्ञान को बहुत शीघ्र ग्रहण कर लिया, इसीलिए ही उन्हें वह दर्जा मिला। ऐसे में ही जब कहते हैं कि कोई सत्यनारायण की कथा करता है तो भी लोग बोलते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, और नहीं करता है तो भी लोग कहते हैं, है ना, कि आप नहीं करते हो, आप नास्तिक हो, दोनों बातें होती हैं। तो जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा इस सत्संग की शुरुआत हुई और बाबा ने जब नियमों पर भी बच्चियों को चलाया और बच्चियां अपनी स्वेच्छा से चली, कोई दबाव के कारण नहीं चली, अपनी स्वेच्छा से, अपनी दृढ़ता से, अपने आत्मविश्वास से उन छोटी छोटी बच्चियों ने अपने जीवन के अंदर खान पान की परहेज, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, इस बातों को अपने जीवन के अंदर अपनाया। और जब ऐसी सारी बातें आई तो कहते हैं स्कूल में जब विद्या को सीखते हैं तो कहते परीक्षा होना जरूरी है, क्यों, तब वो फर्स्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ में जाएगा, बिगर परीक्षा के कोई आगे नहीं बढ़ता है। ऐसे ही इस ओम मंडली में भी परीक्षाएं शुरू हो चुकी, जिन घरों से ये बच्चियां ये माताएं जो आई थी उनके घर वालों ने विरोध करना शुरू किया, और विरोध करते कभी पिकेटिंग करते कभी धरना करते कभी कुछ करते, और एक समय पर जहां बच्चियां रही हुई थी लाखा भवन में उसी को ही जलाने का कार्य किया, काफी सारी परिस्थितियां उन बहनों के लिए निर्माण हुई, उस प्रजापिता ब्रह्मा के लिए निर्माण हुई, लेकिन बाबा आत्मविश्वास था, उनके अंदर एक दृढ़ संकल्प था, दृढ़ता थी, ये कहें कि भगवान के प्रति उनको निश्चय था, और उस निश्चय के आधार से बाबा साहसी, जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, हर बात के अंदर कल्याण की भावना को रख करके बाबा चलते थे। बाबा के चेहरे पर कभी भी उदासी या दुख की लहर इस प्रकार से नहीं आई, बाबा तो भी ऐसे समय पर भी मुस्कुराते रहते थे। एक बार की बात है कि जब कुछ बच्चियां कुछ बहने अंदर थे और कुछ बाहर गए हुए थे, वो जब लौट करके आए तो देखा कि पिकेटिंग करते हुए उनके ही घर के सदस्य उनके ही संबंधी वो खड़े हैं, और वे उन्हें ये कह रहे हैं कि आप लौट करके घर में जाओ, और उन्होंने कहा कि हम लौट करके घर में नहीं जाएंगे, हम अपनी स्वेच्छा से आए हैं, हमें बाबा ने नहीं बुलाया है, हमको बाबा ने एक दिन भी नहीं कहा कि तुम आओ, हम अपनी लगन से आ रहे हैं, इसलिए हम वापस घर लौट करके नहीं जाएंगे, हम अपनी इस जीवन को अच्छा बन रहा है वह अच्छी जीवन हम बनाएंगे। ऐसे उन्होंने जवाब दिया, काफी घंटे तक उनके संबंधी खड़े रहे, उन्होंने सोचा ये 12 13 14 वर्ष की लड़कियां थोड़ी देर में मान जाएंगी और चली जाएंगी, लेकिन वो लड़कियां भी साहसी थी, उन्होंने भी अपने साहस को कम नहीं किया, उनको विश्वास था कि हमारे साथ भगवान है, वो बहुत ये थोड़े, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि पांडव पांच थे, कौरव अक्षुणी सेना थी, लेकिन पांच के साथ भगवान था, तो बस ये भी बहने बहुत थोड़ी सी थी, चाहे उसमें कुछ भाई भी थे माताएं भी थी लेकिन गिनती के थे। तो उन्होंने को फिर छोटी लड़कियों को देख करके जब घर नहीं जा रही हैं तो कहा अच्छा आप अंदर चले जाओ, बीच बीच में फुसलाने के लिए किसी ने कोई चीज खाने का आग्रह किया, किसी ने कुछ पीने का आग्रह किया, लेकिन वह दृढ़ रही, ये उनकी दृढ़ता को देख करके उनको कहा आप भले अंदर जाओ, लेकिन जो कुछ बड़े थे उनके लिए ना कह दिया कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन इन छोटी बहनों ने वहां फिर दूसरी बार अपना साहस दिखाया कि जब तक सबको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी तब तक हम भी अंदर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो हम सभी अंदर जाएंगे। आखिर जेठ भगवान के बच्चों की होती है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों के साथ सदा था, सदा है और सदा रहेगा। उस समय हुई, इसके बाद और भी कोई परिस्थितियां निर्माण हुई, काफी सारी बातें जब चलते हैं तो आती हैं, पवित्रता से संबंधित भी बात आई, अन्य विषयों की भी बात आई। तब एक बार वहां के लोगों ने कोर्ट में केस दाखिल कर दिया, और जब कोर्ट में केस दाखिल किया तो इससे पूर्व एक बात और थी कि जब इस प्रकार से बातें हुई तो बाबा ने सबसे पहले अपनी सारी धन संपत्ति को माताओं और कन्याओं के ऊपर रखा और उसी समय से कह दिया कि सारा कार्य आपको संभालना है, इसलिए इस ओम मंडली की मुख्य ओम राधे रही, तो ओम राधे के ऊपर भी न्यायालय की ओर से पत्र आया था, उसके साथ अन्य पांच को भी पत्र आया था, इसलिए ओम राधे को कोर्ट में जाना पड़ा, उनके साथ अन्य पांच भी गए। कोर्ट में हॉल फुल भीड़ से भरा हुआ है, बाहर भी भीड़ बहुत, जिसके लिए एक्स्ट्रा पुलिस और इंस्पेक्टर्स आदि लगे हुए थे उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन फिर मुकदमे की बात जब आई तो ओम राधे को कटघरे में भी खड़ा होना पड़ा। बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनिएगा कि ओम राधे को जब कटघरे में खड़ा किया और उन्हें कहा कि इस गीता पर हाथ रख करके कहो कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर समझ करके जो कहूंगी वह सच कहूंगी, सच के सिवाय मैं कुछ नहीं कहूंगी। ओम राधे, उन्होंने जज से कहा कि मैं ये कह सकती हूं कि मैं जज साहब को हाजिर नाजिर देख करके जो कहूंगी वो सच कहूंगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगी। मैं जज साहब को हाजिर नाजिर देख करके कहती हूं, मैं भगवान को कैसे देख करके कहूं, भगवान हाजिर नाजिर है ही नहीं। आप सोच सकते हैं कि इस वाक्य को बोलने के लिए एक छोटी सी कन्या इतनी बड़ी हिम्मत है। आज बड़े भी इस हिम्मत को नहीं रख पाते हैं और उस छोटी सी उम्र में उन्हें वह हिम्मत रखनी पड़ी और उस हिम्मत के आधार से जवाब दिया। जज साहब ने कहा कि आप क्या बोलती हैं, आपको ध्यान पर है? तो उसने कहा हाँ मुझे पूरा ध्यान पर है कि मैं जज साहब को हाजिर नाजिर देख रही हूं, मैं भगवान को हाजिर नाजिर नहीं देखती। तो कहा आपको पता है कि आप कानून का उल्लंघन कर रही हैं? तो कहा आप कानून का उल्लंघन कहते हैं, मैं ईश्वर के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकती। जब इस प्रकार से वार्तालाप चली तो उस कोर्ट के हॉल में प्रेस रिपोर्टर भी बैठे थे। उन प्रेस रिपोर्टरों ने रिपोर्ट लिख करके समाचार पत्रों में डाल दिया। इस प्रकार से जब ये वार्तालाप चलता रहा, आखिर जज ने कहा अच्छा अब जो बोलो, ये प्रश्न का जवाब, ये प्रश्न का जवाब, नहीं हाथ उठाया, गीता पर हाथ न रखा, न हाजिर नाजिर भगवान को कहा, आखिर जज को ही झुकना पड़ा। और सभी प्रश्नों के जो जवाब थे वो रिपोर्टर लिखते गए। उस समय सिंध में एक बहुत बड़ी धूम भी मच गई कि इस ओम मंडली की ओम राधे जिसने कोर्ट में भी अपने प्रश्नों का जवाब देकर के जीत प्राप्त की। ऐसे हिम्मतवान वह ओम राधे थी। भले उस समय सभी बच्चे थे, लेकिन जवाब जब एक को देना होता है तो उस समय उसकी हिम्मत। इसीलिए कहते हैं हिम्मत बच्चे मदद खुदा। अगर बच्चे हिम्मत रखते हैं तो खुदा उनको जरूर मदद करता है। तो वह भी हिम्मत देखने को मिलती है। धीरे धीरे करते वहां पर हमारे कार्य चलते रहे और संख्या भी बढ़ती रही। फिर आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय यह संस्था तब तक कराची में थी और कराची से फिर इन्हें यहां पर भारत में आना हुआ। भारत में जिन बहनों के कोई संबंधी रहते थे उन्होंने भी निमंत्रण दिया कि अब आप भारत में आ जाओ। लेकिन भारत में कहां जाएं, कहां रहें, यह भी क्वेश्चन है। लेकिन वो बहनें पहले आई और आकर के उन्होंने स्थान देखा और वह स्थान ये आबू पर्वत है। सन 1950 की यह बात है जब विश्वविद्यालय सिंध कराची से भारत में स्थानांतरण हुआ। जब वहां से आ रहे थे तो वहां पर रहने वाले लोगों ने भी बहुत आग्रह किया कि आप यहीं रहो, आपको कुछ नहीं होगा। और फिर भी जब यहां आना हुआ तो बड़े सम्मान के साथ मुस्लिम भाई बहनों ने भी विदा किया। और पश्चिमबर से ओखा बंदरगाह पर आए और ओखा बंदरगाह से फिर माउंट आबू आना हुआ। यहां व्यक्तियों का नहीं, परंतु जहां पहले रहने गए वहां पर सांप इस प्रकार के जानवरों का भी मुकाबला करना पड़ा। जब इस प्रकार के कोई जानवर आते तो बाबा कहते थे कि बच्चे ये काम विकार भी तो सांप है, उस सांप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो ये सांप भी कुछ नहीं करेगा, इस पर भी विजय पा सकते हैं। ऐसे ऐसे बाबा बच्चों को हिम्मत और साहस भरते थे। और इस प्रकार से ये कार्य करते करते फिर पांडव भवन में हमारा ये मुख्य केंद्र बना प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से। और तब से लेकर के यहां पर ईश्वरी सेवाओं का आरंभ हुआ। जब तक वहां थे तब तक बाहर सेवाएं करने का वह नहीं था। 14 वर्ष वह बहनों ने त्याग और तपस्या को किया। 14 वर्ष के बाद जब यहां भारत में आए तो भारत में आकर के धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा ने ईश्वर के संदेश को, ईश्वर के आदेश को बच्चों को दिया और उस आदेश को सुन करके बच्चे बाहर सेवा करने के लिए निकले। किसी को बाबा ने बंबई में भेजा तो किसी को बाबा ने दिल्ली में भेजा, किसी को कानपुर भेजा तो किसी को कलकत्ता भेजा। धीरे धीरे हर स्थानों पर बहनों को भेजने लगे। तब बहनों ने कहा कि हम जहां जाएं वहां पर क्या सुनाएं, हमें तो पता नहीं है बाहर बोलना भी। जिन 14 वर्ष जिन्होंने तपस्या की, बाहर की दुनिया को जिन्होंने देखा ही नहीं, बाहर के व्यक्तियों से परिचय में आई ही नहीं, और वो जब पहली बार बाहर कदम रखें तो सोच सकते हैं कि वो व्यक्तियों से मिलकर के उनसे किस प्रकार से मिले और क्या बात करें और किस प्रकार से ईश्वरीय सेवाओं को आरंभ किया जाए। पर जहां जहां भी बाबा ने भेजा वहां वहां पहले किसी न किसी के द्वारा निमंत्रण मिले, जैसे निमंत्रण मिलता गया वहां बाबा भेजते गए। धीरे धीरे करते बाबा पहले के वाइसराय, प्रधानमंत्री आदि को लिखना, पत्र के द्वारा उन्हें इस ज्ञान के बारे में जानकारी देना यह कार्य आरंभ किया। फिर उनसे मिलकर के इस ज्ञान की जानकारी देना उस कार्य को आरंभ किया। इस प्रकार से इस कार्य को करते करते बाबा ने, आपने देखा, एक छोटा सा बीज खुद अकेले बाबा, फिर कैसे धीरे धीरे वो पौधा बना और वो पौधा और थोड़ा बड़ा हुआ और आज एक बड़े वृक्ष के रूप में फैला हुआ है। मुझे याद है 1968 के समय भी जब हम छोटे थे, मैं ही 12 साल की थी, तब की बात है कि हम पूछते थे कि कितने सेवा केंद्र हैं, तो कहने में आता था कि टोटल भारत के अंदर 25। लेकिन आज 130 देशों से भी अधिक देशों में और 8,500 के करीब सेवा केंद्र हैं। कितना परिवर्तन। शुरुआत एक व्यक्ति, और उस व्यक्ति की त्याग, उसकी तपस्या, उसकी दृढ़ता वह देखते बनती है। इसीलिए किसी ने ठीक कहा है कि मिलना है भगवान से तो मिल पहले इंसान से, कैसे दर्शन देगा मालिक बिन पूछे दरबान से। क्योंकि परमात्मा वह दिव्य चक्षु के बिगा दिखाई नहीं दे सकता, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, आज आपको सुबह परिचय मिला है। उसे हम मिलना चाहते हैं तो वह कैसे मिलेगा? ये चर्म चक्षुओं के द्वारा तो हम उसे देख ही नहीं सकते हैं। चर्म चक्षु इस जगत की बातों को दिखा सकते हैं, उस नियंता को नहीं दिखा सकते। उस जगत नियंता को देखने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। इसीलिए ही परमात्मा ने एक ऐसे तन को चुना जो अनुभवी है, हर बात का अनुभवी, चाहे ग्रस्त जीवन के रीति से, चाहे सामाजिक रीति से, चाहे व्यापार के दृष्टिकोण से, चाहे धार्मिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से अगर हम नजर फिराएं तो वह अनुभवी था। इसलिए कहते हैं कि जहां कवि रवि नहीं पहुंच सकते वहां पहुंचते हैं अनुभवी। तो वो ब्रह्मा बाबा वो अनुभवी तन था, जिसने अपने धन से, अपने संबंधों से, परिवार से एक सेकंड के अंदर ममत्व को खत्म कर दिया, जो नष्ट मोहा बन गए। वो नष्ट मोहा बन करके ही इतने सारे विशाल कार्य को वो कर पाए। अगर हमारा किसी में मोह है तो मोह के वश होने के कारण ऐसे कार्यों को नहीं कर सकते हैं, ऐसे श्रेष्ठ सचरित्रवान जीवन बनाने के लिए, श्रेष्ठ संस्कारों की धारणा करवाने के लिए वो खुद स्वयं कितना निर्माणचित है, कितना निरहंकारी है, कितना वह स्वयं निर्विकारी है। एक बोलना आसान होता है कि वे निर्माण है, लेकिन निर्माण माना किसी भी बात को सहज रीति से आप स्वीकार कर लो, झुक जाओ, किसी भी बात को करने के लिए झुकना वो इतना आसान है। लेकिन बाबा की यह विशेषता जो प्रैक्टिकल में भले हम बचपन में कम समय ही मिले, लेकिन जो देखने को मिली वह यह थी कि उनके अंदर नम्रता की भावना, झुकने की भावना हर बच्चे के प्रति, चाहे वह अपकार क्यों न किया हो उसके प्रति भी उपकार करना, परोपकार की भावना को रखना वो नजर आई। वो बाबा में थे तो प्रैक्टिकल जीवन के अंदर बाबा ने धारण किया। निर्विकारिता, हर विकार पर पहले बाबा ने स्वयं विजय प्राप्त की, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत की भावना, वैर विरोध की भावना बाबा के अंदर कभी नजर नहीं आई। आज आप हमको कोई कुछ कह दे, भले हम बाहर जवाब ना भी दें, लेकिन मन के अंदर थोड़ी सी फीलिंग्स वो तो आ जाती है। तो मन के अंदर फीलिंग आती है तो हमारे चेहरे पर मालूम तो पड़ता है ना कि ये बात इनको अच्छी नहीं लगी, ये बात इनको अच्छी लगी। लेकिन बाबा के चेहरे पर जो देखने को मिला, अच्छा या बुरा, दोनों में समान, दोनों में समान। हमारे चेहरे पर अंतर आएगा, कोई प्रशंसा करेगा तो हम प्रफुल्लित नजर आएंगे, कोई निंदा करेगा तो हम उदास नजर आएंगे। लेकिन बाबा, कैसी भी आत्माओं ने निंदा की, अपकार किया, फिर भी उससे बाबा प्रसन्न चित्त मुद्रा में ही मिलते थे। यहां तक कि मुझे सुनाते सुनाते एक बात याद आती है, कोई से संबंधित अगर हो जाए तो बुरा न माने, कि एक बार बाबा के पास एक व्यक्ति आया, क्योंकि भारत देश में भी जैसे पाकिस्तान में ये बातें घटी, ऐसे भारत देश के अंदर भी ऐसी कई घटनाएं एक पवित्र जीवन बनाने के लिए घटी। एक साधु, एक संत, एक महात्मा पवित्र जीवन बनाने के लिए घर बार का त्याग करके जा सकता है, स्त्री को विधवा बना के जा सकता है, बच्चे को अनाथ बना के जा सकता है, उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन एक नारी अगर अपने जीवन के अंदर ग्रस्त जीवन में रहते भी पवित्र बनती है तो उसके लिए कई सारी बातें खड़ी हो जाती हैं। सोचने की बात है। तो जब हमारी माताओं बहनों ने अपने जीवन को पवित्र बनाने की बात की, तो उनों के घर में भी इस प्रकार की कई परिस्थितियां निर्माण हुई। और ऐसी बातें जब निर्माण हुई तो कहते हैं कि कहने वाला कौन है, हम उनको जाकर के करते हैं। और एक व्यक्ति जो हमारी संस्था में आया और उसने कहा कि मुझे बाबा से मिलना है, और तब हमारी छोटी छोटी जो बहनें थी वही पहरे पर थी। आजकल तो सिक्योरिटी पर हम देखते हैं भाई लोग हैं, लेकिन वह समय था जब बहनें सिक्योरिटी करती थी। तब बहनों ने उन्हें रोका, कहा कि नहीं जा सकते, क्योंकि बहनों को थोड़ा अंदाज आ गया कि बाबा के लिए जरूर कुछ ऐसा करेगा, इसलिए उन्होंने वहीं रोक दिया। और एक बहन के द्वारा बाबा को सूचना दे दी कि बाबा वो बच्चा आया है, परंतु वो बच्चा ऐसा नहीं लग रहा है और उसको आज से ही मिलना है। तो बाबा ने कहा बच्ची भेजो भेजो। जब बाबा ने कहा बच्ची भेजो और बच्चियां सोच रही थी कि कुछ कर न बैठे, लेकिन बाबा ने जब आदेश दिया भेजो तो बच्चियों ने भेजा। और वह भाई जब बाबा के कमरे में गया बाबा से मिलने के लिए, तो बाबा ने कहा आओ बच्चे आओ, बाबा से मिलने आए हो, बड़े प्यार से बाबा ने सिर्फ इतना ही कहा। बाबा के उस मुखमंडल को देख करके, बाबा के उन नैनों को देख करके, बाबा की इस मृदु भाषा को सुन करके वो व्यक्ति देखता ही रहा, देखता ही रहा। और वो व्यक्ति था पंजाब से आया हुआ, कोई सिख धर्म का, और वो अपने साथ तलवार ले आया था। जो ही वो देख रहा था तो उन्हें ब्रह्मा बाबा नजर नहीं आया, वो उन्हें गुरु नानक देव नजर आया। और जब उसने देखा ये तो गुरु नानक देव है, उनके हाथ से तलवार गिर पड़ी और उसने बाबा से माफी मांगी कि बाबा मुझे क्षमा कर दो। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे। तो बाबा ने जब उसे कहा कोई बात नहीं बच्चे, वह तो एकदम जैसे नहीं किस भाव से आया, मैंने क्या समझा और ये क्या है, ये जीवन बिगाड़ नहीं रहा है लेकिन ये अनेकों के जीवन को संवार रहा है, ये वो है। जब उसने ऐसा महसूस किया, देखो वह हस्ती है ब्रह्मा। बाबा हर बच्चे की पालना, एक मीठे बच्चे बस चाहे कोई भी है, आया तो किस लिए था समझ गए ना हम सभी है? लेकिन बाबा को देख करके उससे क्या महसूस हुआ। इसी प्रकार से बाबा धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर भी ऐसा पुरुषार्थ करते रहे, क्योंकि ज्ञान और योग जब मिला और भगवान ने अंदर प्रवेशता की तो उस व्यक्ति को अपना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, ऐसा नहीं है, उसे अपना पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ये तन भगवान ने लोन पर लिया है या कहें कि किराए पर लिया है, किराया जरूर देगा लेकिन उसका अपना पुरुषार्थ वह तो उसे करना ही पड़ता है। हमने यह भी देखा कि बाबा को शरीर की कर्म भोगनाएं किसी को छोड़ती नहीं है। बाबा को भी खूब खांसी थी, थोड़ा दमा की तकलीफ भी थी, तो बाबा को बहुत जब खांसी होती थी तो बाबा ये नहीं कहता था कि शिव बाबा अभी मेरी खांसी को मिटा दो ना, नहीं, बाबा कहते थे कि बच्चे ये इस आत्मा का कर्म का भोग है, इस आत्मा का, परमात्मा का थोड़ी है, तो इस आत्मा का है तो वो इस आत्मा को भोगना भोगने ही होगी। बाबा ये खुद कहते थे। और जब खांसी आती तो हम देखते तो बाबा कहता कि बच्चे ये खांसी तो मेरी सखी है, मेरी फ्रेंड है। बाबा ने कभी भी कर्म की भोगनाओं को कर्म की भोगना के रीति से नहीं समझा, उस शारीरिक व्याधि को भी ये बाबा ने कहा कि मेरी फ्रेंड, अपना फ्रेंड बना दिया, तो फ्रेंड तो क्या करेगा, कभी अच्छा भी बोलेगा तो कभी नहीं, हमारे साथी फ्रेंड क्यों ना हो बचपन से लेकर के शायद अब तक भी हमारे मित्र सखियां ऐसे ही होंगे, तो कभी हमारे साथ अच्छा भी बोलते हैं कभी खराब भी बोलते हैं लेकिन मित्रता है ना। तो शरीर के साथ भी ये व्याधियां आना न आना ये भी एक मित्रता है, तो उनके साथ भी बाबा इसी प्रकार से चले। थोड़े दिन पहले मैंने किसी बहन के द्वारा सुना, क्योंकि मैंने तो कम उन बहनों ने ज्यादा देखा, उनके मुख से जो मैंने सुना तो बाबा सिर्फ व्यक्ति को बच्चे बच्चे नहीं कहता था, क्योंकि बाबा सारे विश्व को परिवर्तन करने का कार्य कर रहा है। तो उस बहन ने सुनाया, अभी भी वो पांडव भवन आप लोग कल देखने जाएंगे बड़े ध्यान से देखना, उस पांडव भवन में झोपड़ी जहां बनी हुई है एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है, वहां पर बाबा अपने हाथों से बंदर को भी जब खिलाते थे तो बंदर ऐसा करके नहीं बुलाया, बाबा उनको भी कहता आओ मीठे बच्चे खाओ खाओ। जानवरों के प्रति भी, एक चिड़िया को जब खिला रहे थे वो बहन सुना रही थी तो मेरे को भी बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि चिड़िया को भी बाबा अपने हाथ में दाने रख करके कह रहे मीठी बच्ची आओ खाओगी। ये भावना उस व्यक्ति के अंदर, ऐसी भावना क्या आज हम सभी के अंदर है? उस व्यक्तित्व से हमें ऐसी भावनाएं सीखने को मिलती हैं कि कोई भी है हम उसे प्यार से संबोधित करते हैं, वो प्यार की कला उस ब्रह्मा में थी। और किसी भी कार्य को करने के लिए ब्रह्मा के अंदर यह भी देखा कि ट्रस्टी निमित्त, एकम निमित्त है, ये कार्य की जवाबदारी आपके ऊपर है। बाबा कहता मैं तो निमित्त हूं, करण करावन घार तो वो स्वयं भगवान है, हम तो सिर्फ उसकी आज्ञा पर, उसकी श्रीमत पर, उसके इशारों पर हम चलने वाले हैं। कभी नहीं बाबा ने कहा कि मैं कर रहा हूं। आज हम ये टिपोई भी उठा करके रखेंगे ना तो कहेंगे मैंने उठा करके रखी, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने विश्व परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य किया, लेकिन बाबा के मुख से कभी मैं वह सुनने में नहीं आया, वह कभी भाव चेहरे पर देखने में नहीं आया। हाँ, एक शुद्ध रूप का मैं आत्मा, मैं निमित्त, मैं ट्रस्टी, वो जरूर देखने में आया, परंतु वो भाव नहीं दिखाई दिया। हर कार्य में चाहे छोटा बच्चा ही क्यों न हो, उस छोटे बच्चे को क्या बुजुर्ग हो, युवा हो, हर एक को हर कार्य में बाबा अपना समझ करके उनसे बात करना, उनसे मदद करना, इतना बाबा के अंदर वो भावना थी। और करने के बाद ऐसे न्यारा जैसे मैंने कुछ नहीं किया, करते सब कुछ थे परंतु सब कुछ करते हुए भी बाबा का कभी भी ऐसा भाव नहीं आया कि बच्चे मैंने किया, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों न हो। और किसी के पास कोई परीक्षा आ गई, कोई परिस्थिति आ गई, कोई समस्या आ गई, तो बाबा पूरा उनके लिए वो तपस्या करते थे, योगदान देते थे। यहाँ एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति ने गुरुजी से कहा कि इतनी सारी परिस्थितियां हैं तो क्या आप हमें मदद नहीं करते, भगवान हमें मदद नहीं करता? तो कहा हाँ जरूर करता है। तो कहा कैसे माने कि भगवान हमें मदद कर रहा है? तो कहा जब तुम चल रहे हो तो तुम्हारे दो पैर के आगे अगर कोई दो पैर और दिखाई देते हैं तो तुम समझो कि तुम्हें भगवान मदद कर रहा है, भगवान के चिन्हों पर तुम चल रहे हो। एक बार उस व्यक्ति के पास बहुत परिस्थिति आई, बहुत परेशान हो गया, उनके कोई संबंधियों ने, कोई फ्रेंड्स ने, किसी ने भी उसे मदद नहीं की और वो भगवान को पुकार रहा है कि अब तू मुझे मदद कर, चारों ओर से मैं परिस्थितियों में गिरा हुआ हूं, अब मैं कहां जाऊं। और वो रास्ते पर चल रहा है तो पहले जो दो पैर उसे आगे दिखाई देते थे वो दो पैर भी दिखाई नहीं दे रहे थे, तो वो भगवान को भी कोसने लगा कि भगवान तू भी कैसा है, तूने कहा था कि देख मैं तेरे आगे आगे हूं, दो पैर मेरे हैं, पीछे तुम हो, तो अब तू कहां है, अब तू कहां खो गया, बहुत कुछ बोलने लगा। थोड़े दिनों के बाद परिस्थिति ठीक हुई और वो जो चल रहा था तो उसके आगे दो पैर वापस दिखाई देने लगे। तब उसने भगवान से कहा कि भगवान तू भी कैसा है, परिस्थिति के समय तो तुम भी गुम हो गया था और आज जब मैं ठीक हो गया तो मेरे आगे आगे चल रहा। तब कहते हैं कि भगवान ने उसे कहा कि हे बच्चे, जब तू चारों तरफ परिस्थितियों में गिरा हुआ था तब तो तू चलने के लायक भी नहीं था, मैंने अपने गोद में अपने पलकों पर तुझे बिठाया था, मैं तुझे गोद में लेकर के चल रहा था तो वो दो पैर मेरे थे, तेरे नहीं थे। व
वैसे ही बात हमारी है। आज कलयुगी सृष्टि के अंदर कौन सा ऐसा व्यक्ति, आप लोगों में से, समस्त दुनिया को छोड़ो, आप लोगों में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये दावे के साथ कह सकता है कि मेरे पास किसी भी प्रकार की परिस्थिति नहीं है? कोई है? कोई हाथ नहीं उठे। माना हम सभी के पास क्या है? परिस्थिति है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। तो ऐसे समय पर आप और हम सभी को ये महसूस करना चाहिए कि आज के समय पर व्यक्ति अपने आप अकेले वो इस दुनिया के अंदर जी सके, चल सके, अपने कार्यों को कर सके, वह असंभव है। जो हम कुछ कर रहे हैं वो करा रहा है, वो हमारे सहयोग, हमें मदद, हमें शक्ति, हमारे में साहस वो भर रहा है। तो कहने का भाव ये है कि इस विश्वविद्यालय के अंदर दिशेरी ज्ञान और राज्यों की शिक्षा वह स्वयं परम पिता परमात्मा निराकार जो ज्योति स्वरूप है वह दे रहा है। और वो जब देता है तो माध्यम की आवश्यकता है, और वो माध्यम ऐसा चाहिए जिसकी भाषा को आप और हम समझ सकें। किसी और रूप में आ जाए तो हम उसे समझ ही ना पाए, प्रेरणा से दे तो हम भी नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या बोल रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसकी भाषा को समझा जाए। इसीलिए परमात्मा ने इस प्रजापिता ब्रह्मा के तन में दिव्य प्रवेश किया है, और वह दिव्य प्रवेश करके उसके द्वारा हमें यह ज्ञान और राज्योग सिखा रहा। तो ये माध्यम है, ये ब्रह्मा को हम कभी भगवान भी नहीं कहते हैं, और इस ब्रह्मा को हम कभी गुरु भी नहीं कहते हैं, क्योंकि सतगुरु वह स्वयं परम पिता परमात्मा है। आज कोई भी बात किसी व्यक्ति के द्वारा ही सिखाई जाएगी, ऐसे ही ये ज्ञान, ये राजयोग, ये परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ही सिखाते हैं। और वो सिखाते भी इस ही समय पर हैं जिस समय हमें आवश्यकता है। पहले सिखाता, पहले बोलता तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। हम कहते ना, इतनी सारी परिस्थिति निर्माण हुई उसके बाद आकर के भगवान ने सिखाया। जैसे कोई घटना घटनी होती हो, माँ बाप या शिक्षक या हमारे घर में पूर्वज पूज्य जो भी हो, वो हमें कहे बेटा आगे चल करके ऐसी बात निर्माण न हो, इसलिए तू ध्यान रख। कहाँ कौन सुनता है? सुनता कब सुनता है? जब परिस्थिति निर्माण होती है, और उस समय जब हमारे घर के वरिष्ठ हमें जब ये बात कहते हैं तो हमें समझ में आता है कि बात राइट है। ऐसे ही परमात्मा ने ज्ञान अगर हमें पहले दिया होता तो हम भी मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन आज सृष्टि पर जब पापाचार, भ्रष्टाचार या आज के समय के बलात्कार केस जैसे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे समय पर जब परमात्मा यह ज्ञान दे रहा है तो हमें उसकी वैल्यू है, उसकी कदर है। तब तक हमें कदर नहीं होती। इसलिए हम यह भी ना सोचे कि भगवान पहले से बोलता, पहले से बोलता तो हम ऐसा करते ही नहीं, परंतु फिर भी जरूर करते, फिर भी जरूर करते। इसलिए परमात्मा आज हमें इस श्री ज्ञान और राज्य की शिक्षा ब्रह्मा के द्वारा समझा रहे हैं, दे रहे हैं। तो मैं भी आप सभी से यही अनुरोध करूंगी कि आप ऐसी पावन धरती पर आए हैं, देर ही सही, जब जागे तब सुबह सही, तो अब जब इस ज्ञान को हम सुन रहे हैं तो सुन करके यहाँ ही छोड़ करके न जाएं। इस ज्ञान को आप अपने साथ लेकर के जाएं, इस ज्ञान को सुन करके, समझ करके, आचरण में लाने का एक दृढ़ संकल्प करके जाएं। जो आपके कार्य प्रणाली में भी आपको काम आएगा, जो आपके कार्य प्रणाली में आपको मदद करेगा। इसलिए इस ज्ञान को आप अपने साथ लेकर के जाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।
स्नेह पत्थर को भी पानी कर देता है, त्याग आत्माओं को दानी बना देता है, तपस्या सभी को रूहानी बना देती है और सेवा सबको वरदानी बना देती है, सबको वरदानी बना देती है। ऐसे ही सेवा मूरत, त्याग मूरत, तपस्वी मूरत, वरदानी मूरत कुंती बहन का हम बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं।